We've been thinking of this theme we have here of pressing towards the finishing line.
ये जो थीम है, ये जो थीम है कि हम आखिरी तक पहुंचे उसके विषय में हम देख रहे थे.
And why do we have to press?
ये क्यों बोला गया कि हमें उसपे जोर लगाना है?
Because if there's opposition.
क्योंकि उसका विरोध हमेशा होता है.
If there's no opposition, we don't press anything. We just move forward like. Smoothly.
अगर विरोध नहीं है तो हम आसानी से आगे जा सकते
हैं. But he says, I press towards the mark means is somebody trying to oppose me.
इसका मतलब है कि जब हम उसको जोर लगा रहे हैं, मतलब कुछ विरोध में खड़ा है, इसीलिए हमें जोर लगाना है.
The devil,
शैतान,
the lusts in my flesh,
मेरे शरीर की इच्छाएं,
the spirit of the world,
इस दुनिया की आत्माएं,
these are the commonly known three enemies of the Christian.
ये जो तीन शत्रु हैं इस संसार के,
the devil, the flesh, and the world.
शैतान, हमारा इच्छाएं, हमारी शरीर और ये दुनिया,
they are opposing us tremendously.
ये हम हमारे विरोध में हमेशा हैं.
And you know how all these three forces are always trying to push you back.
ये तीन जो शक्तियां हैं हमेशा आपको पीछे धक्का दे रहा है.
The devil is always trying to prevent you from going forward.
शैतान हमेशा वो कर रहा है कि आप आगे ना बढ़े.
The desires in your flesh are always being aroused to push you back.
आपकी इच्छाएं हमेशा उठती हैं कि आप हमेशा पीछे जाएं.
And the world means all your friends and influences and all the billboards and all are there to draw you back.
और ये जो दुनिया, मतलब ये आपके दोस्त, आपके भाई लोग, ये जो बिलबोर्ड जो बोर्ड पे लगा रहता है, वो सब आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से.
There's only one hope.
एक ही हमारी आशा है.
If God is behind us to push us forward.
प्रभु हमारे पीछे होके हमें आगे की ओर लेके जाए.
So the most important thing we need to run this race is to make sure that God is always backing me up and pushing me forward.
एक ही चीज इस दौड़ में सबसे मुख्य है, वह है कि प्रभु का हाथ हमें निरंतर पीछे से धक्का देके आगे लेके जा रहा है.
So all of us must be very careful to ensure that God will always support me.
इसलिए हम सबों को यह जागरूक रहना है कि प्रभु हमारे साथ हमेशा है, हमारी मदद के लिए.
Think of this wonderful verse in Romans chapter 8.
ये रोमियो के 8वें अध्याय में ये अद्भुत वचन को जरा ध्यान दीजिए.
Verse 31.
31वां वचन.
The last part of that verse it says, If God is for us, who can be against us?
अगर प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी?
When you think of that, what do you think?
जब ये आप सुनते हो तो आप क्या सोचते हो?
I once went to a shop in Bangalore run by a non-Christian.
मैं एक अविश्वासी द्वारा चलाया हुआ एक दुकान में गया बंगलौर में.
And at the counter where they collected the cash.
वहाँ जो काउंटर पर जहाँ पैसा लेते हैं,
they had a verse. वहाँ they were Muslims, I think.
वो मुसलमान लोग थे. वहाँ एक ऐसे टिप्पणी लिखी हुई थी.
If God is for me, who can be against me?
वहाँ लिखा था, अगर प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी?
So you better pay up.
इसलिए आपको पैसा भरना पड़ेगा.
For what you have bought, don't try to cheat me.
आपने जो भी लिया है उसके लिए पैसा देना. आप मेरे को चोरी नहीं कर सकते.
That's not the meaning of this verse.
इसका मतलब ये नहीं है ये वचन का.
That if God is for me, nobody can cheat me.
अगर प्रभु मेरे साथ है कोई मेरा चोरी नहीं कर सकता.
A lot of people have cheated me in my life.
कई लोगों ने मेरा चोरी किया है.
It just gives me an opportunity to forgive them.
मेरा इच्छा है कि मैं उन सबको क्षमा करूं.
So God is for you does not mean nobody will ever cheat you in your life.
प्रभु मेरे साथ है इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है.
This is a spiritual thing.
ये एक आत्मिक चीज है.
Nobody will be able to hinder me spiritually from pressing on to God's purpose for my life.
इसका मतलब यह है, मेरे जीवन के बारे में जो प्रभु का हित है उसमें कोई भी मुझे बाधा नहीं डाल सकता.
And if God is not for you,
अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है,
I'll tell you the opposite of that, there's no hope for you.
इसका उल्टा यह है कि हमको कोई भी आशा नहीं है.
So we have to make sure that God is always supporting me, then I'll be able to press on without any difficulty.
इसलिए हमें यह जागरूक रहना है कि प्रभु हमेशा हमको सहायता कर रहा है ताकि हम हमेशा आगे बढ़े.
If you believe that,
अगर ये आप विश्वास करते हो,
the most important thing you need to understand is how can I make sure that God is always on my side supporting me.
इसलिए सबसे जरूरी है कि हम ये समझे कि प्रभु कैसे हमारे साथ हमेशा हमारा सहायक बन के रह सकता है.
And that is written in two verses. It's written twice in the New Testament.
और ये चीज दो जगह लिखा है नए करार में.
Same verse.
एक ही वचन.
James chapter 4.
याकूब चौथा अध्याय.
It says here, verse 6.
याकूब चौथे अध्याय का छठवा वचन
इन द लास्ट पार्ट
आखिरी भाग
गॉड इज अपोज्ड टू द प्राउड बट ही गिव्स ग्रेस टू द हंबल
प्रभु विरोध करता है घमंडियों का और साथ
That
देता
is,
है दीनों
or in
का
other words, God will push back all proud people, but he'll get behind and support all humble people.
इसका मतलब है कि प्रभु सारे घमंडियों को विरोध करता है उनको धक्का देता है पीछे की ओर और सारे दीनों को पीछे
and
से आगे धक्का देता है
1 Peter 5 verse 5
और एक पत्रस 5 का 5
again repeated
वही वचन वापस दोहराया गया है
Why has God repeated it just after 3-4 pages?
एक कुछ पन्नों के बाद वापस प्रभु क्यों इसको दोहराता है?
I think because he knows that most Christians read the Bible carelessly.
क्योंकि वो जानते हैं कि सारे ख्रिस्ती सही रीति से बाइबल पढ़ते नहीं हैं.
So he repeats it. Hey, in case you missed it in James 4, I want to tell you again.
इसलिए शायद आप अगर याकूब में पढ़ना भूल गए हैं तो पत्रस में तो पढ़ लेंगे.
Again.
वापस.
God will stand against you if you are proud.
प्रभु आपके विरोध में खड़ा रहेगा अगर आप घमंडी हो तो
ऑलरेडी द वर्ल्ड द फ्लैश एंड द डेविल आर अपोजिंग यू
ये दुनिया ये हमारी इच्छाएं और शैतान हमारे विरोध में खड़ा है
एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ गॉड आल्सो अपोजेस यू
और उसके साथों साथ प्रभु भी हमारा विरोध करे
एंड आई वांट टू टेल यू इन जीसस नेम देयर इज नो होप फॉर यू
मैं बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम की हमको कोई भी आशा नहीं रही
व्हाई इज इट सो मेनी क्रिश्चियंस डोंट मेक प्रोग्रेस इन देयर लाइफ
ऐसा क्यों है कि कई ख्रिस्ती आत्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते
Why is it after so many years they're still defeated by the same old sins they were defeated by 20 years ago?
ऐसा क्यों है कि 20 साल के बाद भी वही पाप में ख्रिस्ती लोग गिरते ही रहते हैं?
Why is it husbands and wives are quarreling and fighting exactly like they did 25 years ago?
25 साल पहले जैसे भाई पति और पत्नी झगड़ा करते थे वैसे आज भी क्यों झगड़ा करते हैं?
I'll tell you.
मैं बताता हूं.
Because God is opposing them along with the world, the flesh and the devil.
क्योंकि प्रभु भी उनके विरोध में है जैसे शैतान ये इच्छाएं और ये दुनिया उनके आगे है.
Why is it some marriages are worse than what they were 5 years ago?
ऐसा क्यों है कि 5 साल पहले उनका जो विवाह का स्थिति था उससे भी बिगड़ गया है आज?
They call themselves Christians and they divorce.
और वे कहते हैं कि वो ख्रिस्ती हैं और वो तलाक देते हैं.
Or even if they don't divorce, they just sit in the same house and fight with each other every day.
वे शायद तलाक ना दे तब भी घर एक ही घर में बैठ के लड़ाई झगड़ा करते हैं.
It's a disgrace to the name of Christ.
ये प्रभु के नाम की बड़ी निंदा है.
I told one person once.
मैंने एक व्यक्ति के से इस प्रकार बोला.
I think you should change your Christian name and take some other non-Christian name. You're a disgrace to the name of Christ.
मैं बोला आपका जो ख्रिस्ती नाम है वो बदल के आप कोई हिंदू नाम डाल दीजिए.
Don't call yourself Matthew, John, and James and all, and you fight with each other at home.
आप अपना नाम मैथ्यू जॉन याकूब ऐसे मत कीजिए कोई और कोई नाम ले लीजिए.
Take some name where they know you're not a Christian.
ऐसा नाम लो ताकि प्रभु का नाम ही ना आए उसमें.
Don't bring the name of Christ to disgrace. Even if you want to keep on fighting, but get rid of that impression you give to others. You're a Christian.
आप एक ख्रिस्ती होकर के एक नाम से उसमें से आप छुटकारा पाइए और कोई नाम लिए प्रभु की निंदा न कीजिए.
The first request that Jesus taught us to pray was, "Our Father in heaven, hallowed be thy name."
पहली जो निवेदन किया था प्रभु ने प्रार्थना में प्रभु तेरा नाम की महिमा हो.
If you were concerned about the name of Jesus as much you are concerned about your name.
अगर आपको उसी प्रकार से जैसे आपके नाम की महिमा के लिए आप सोचते हो प्रभु के नाम का भी आप सोचते तो आपके जीवन में भला होता.
God is my witness as I say that for more than 50 years in my life my prayer has been Lord Jesus let your name be honored in India.
प्रभु की साक्षी हो प्रभु का साक्षी लेते हुए बोलता हूँ कि मेरी हृदय का आग्रह यही है 50 साल से कि प्रभु इंडिया में तेरा नाम महिमा पाए.
Don't let me ever do anything that will bring dishonor to your name.
प्रभु मैं ऐसा कुछ भी ना करूं ताकि तेरे नाम की निंदा हो.
I must say I failed in the early years.
मैं साक्षी देता हूं कि मैं पहले शुरुआत में मैं बहुत गिरा.
I would weep and be ashamed.
मैं गिर के रोता था
and
और
Lord,
शर्मिंदी था.
I want to get out of this. Your name to be hallowed in my life.
प्रभु मैं इसमें से उठना चाहता हूं तेरे नाम की महिमा मैं देखना चाहता हूं.
If you have that type of desire,
अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है,
I tell you God will do for you what he did for a sinner like me.
मैं ये कहता हूं कि प्रभु ने मेरे जैसे पापी में जो कार्य किया वो आपके जीवन में करेगा.
For a backslidden believer like me,
मेरे जैसे जो पिछला गया हुआ व्यक्ति जीवन में बदलाव किया वैसे आपके जीवन में करेगा.
Fill me with the Holy Spirit and God behind me and pushed me forward.
प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा और मुझे आगे धक्का दिया.
And brought me into a life I never experienced for so many years.
और ऐसे एक जीवन को लेके आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था.
If you have one desire,
एक ही अगर आपका इच्छा रहा
Lord
तो,
Jesus,
प्रभु यीशु,
let your name be honored in my life.
आपकी जो महिमा है मेरे जीवन में आए.
Don't let me do a single thing that will dishonor you.
मैं ऐसा एक भी काम ना करूं चाहे तेरे नाम की निंदा हो.
Let not your name be dishonored by the the way I live at home.
मैं जिस प्रकार से घर पे रहता हूँ उसके कारण तेरे नाम की निंदा न हो.
Don't let our children go away from you because they see how we as parents are living before them.
मेरे बच्चे ऐसे दूर न भाग जाएं ये सोच करके कैसे मेरे माँ और पिता जीते हैं घर पे.
And if that brings a concern.
ये मेरे जीवन में एक दुख लेके आता
है. The type of concern you would get if some family member was getting cancer.
जैसे एक घर में कैंसर से बाधित है कैसे हम चिंतित हो जाते हैं वैसा.
Supposing your child has got some serious mental problem.
सोच के देखो आपके बच्चा थोड़ा mentally retarded है.
Would you be concerned?
तो क्या आप दुखित होंगे?
You should be more concerned that the name of Jesus is dishonored in your home.
उससे ज्यादा प्रभु के यीशु के नाम का निंदे के बारे में हमें ज्यादा चिंतित होना है.
So when you are like that, God will show you how He can support you.
तो ऐसा आपके मन में इच्छा रहा तो प्रभु बताएगा कैसे आपको वो मदद करेगा.
The three secrets of the Christian life are humility, humility, humility.
तीन गुप्त चीजें जो प्रभु में पढ़ने के लिए है वो है दीनता, दीनता, दीनता.
See Philippians chapter 2.
फिलिपियों की दूसरी अध्याय.
I never get tired of saying this.
ये बोलने में कभी थकता नहीं हूँ.
Because I find many people haven't learned it.
क्योंकि अभी भी लोगों ने यह सीखा नहीं है.
I remember hearing the story of the great evangelist D.L. Moody when he went to England.
मैं D.L. Moody एक evangelist, बड़े evangelist के बारे में सुना जब वो इंग्लैंड में गए थे.
And I think he had a meeting for 6 or 7 days.
वहाँ उनका मीटिंग था 6 या 7 दिन के लिए.
Every day the subject was you must be born again.
और हर दिन उनका एक ही विषय था आपको नया जन्म पाना है.
So one unconverted man.
एक अविश्वासी आदमी आया.
Clever man.
वो बहुत बुद्धिमान था.
He got fed up listening to the same message.
वो सुन सुन के थक गया.
He went to D.L. Moody.
वह D.L. Moody के पास गए.
He said, "You don't have anything else to talk about?"
क्या आपके पास और कोई विषय नहीं है बोलने के लिए?
Why you keep on saying you must be born again?
एक ही चीज बार-बार क्यों बोल रहे हैं आपका नया जन्म पाना है करके?
Moody said, "Because you must be born again."
उन्होंने बोला आपको नया जन्म पाने की जरूरत है इसलिए मैं बोल रहा हूँ.
That's why I'm keeping on saying it. Until you're born again, I have to keep on telling you.
इसलिए मैं बोलता रहूँगा जब तक आप नया जन्म नहीं पाते हो.
So until you've learned to humble yourself like Jesus, I've got to keep on telling you, humble yourself.
जब तक आप प्रभु यीशु के समान अपने आप को दीन नहीं बनाते तब तक मैं ये बोलता ही रहूंगा.
You're not getting grace.
तभी प्रभु आपको कृपा दे सकता है.
Grace comes upon you, sin cannot rule over you. That is the proof.
जब कृपा आपके ऊपर आता है तो कभी भी पाप आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं पाएगा.
Supposing you had a sickness.
सोच के देखो आपको अगर बीमारी है.
You took the treatment which is supposed to cure you.
और आपने कुछ दवा पानी लिया उसमें से चंगा पाने के लिए.
You took that treatment but the disease is still there.
आपने वो ट्रीटमेंट तो लिया लेकिन उसमें से आपको ठीक नहीं हुए.
That means you didn't take the proper medicine.
इसका मतलब है आपने सही दवा नहीं लिया.
So if you say I've got grace.
आप बोलते हो कि आपको कृपा मिली है.
And Romans 6:14 says when you're under grace sin cannot rule over you.
और रोमियों का 6:14 बोलता है अगर कृपा आपके ऊपर है तो पाप प्रभुता नहीं पाएगा.
Romans 6:14, don't forget.
कभी भी रोमियो 6:14 को कभी ना भूलना.
Sin cannot rule over you when you're under grace.
पाप आपके ऊपर कभी भी प्रभुता नहीं पड़ेगा अगर कृपा ऊपर है तो.
It's like saying when I'm under this roof, the rain cannot fall on me.
ये ऐसा है जैसे मेरे ऊपर छत है तो कभी बारिश मेरे ऊपर नहीं आएगा.
Then how did I get wet?
तो फिर मैं गीला कैसे हुआ?
Aha, I went outside the roof.
इसका मतलब है कि मैं छत से बाहर निकल गया.
How is it sin ruled over you?
क्या है, क्या कारण है कि पाप आपके ऊपर प्रभुता पा रहा है?
You moved away from being under grace and you went outside.
क्योंकि आप कृपा के अधीनता से बाहर निकल गए.
Romans 6:14 is clear. If you're under grace, no sin can rule over you.
रोमियो 4:14 एकदम स्पष्ट है अगर कृपा आपके ऊपर है तो कभी पाप प्रभुता नहीं पाएगा.
It's exactly the same. If I'm under this roof, I cannot get wet with the rain.
ये वैसा ही है जैसे ये छत के नीचे रहा तो मैं कभी गीला नहीं होऊंगा बारिश से.
If I got wet, it means I went outside the roof.
अगर मैं गीला हुआ तो यही स्पष्ट है कि मैं कमरे से बाहर निकल गया.
If sin began to rule you in some area, it means you went outside from under grace.
इसका मतलब यही है अगर पाप आपके जीवन में आ रहा है तो मैं वो कृपा के छत से बाहर आ गया.
Why did God remove that covering of grace from over you?
ये जो कृपा का जो छत है क्यों आपके ऊपर से निकाल दिया?
Only one reason.
एक ही कारण है.
God gives His grace only to the humble.
प्रभु उनको ही कृपा देता है जो दीन है.
Not everybody.
सबको नहीं.
Philippians 2.
फिलिपियों का दूसरा अध्याय.
Verse 5.
पांचवा वचन.
Have this attitude in yourself which was in Christ Jesus.
आप में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था.
Very important.
बहुत जरूरी है.
Christ had many qualities.
प्रभु के पास कई गुण थे.
But here is emphasizing one particular quality.
वहाँ एक विशेष गुण के बारे में बताया जा रहा है.
And he says, have this attitude.
और ये गुण आप में रहे.
Though he was God.
वो प्रभु होने के बावजूद भी छठवां वचन अपने आप को शून्य करके एक मनुष्य के समान बनाया. यही दीनता है.
गॉड बिकमिंग मैन इज अ फैंटास्टिक डाउनवर्ड स्टेप ऑफ ह्यूमिलिटी.
प्रभु जो परमेश्वर हैं वह नीचे एक मनुष्य के रूप में नीचे की ओर आ रहे हैं. यही सबसे अधिक दीनता है.
सेकंड स्टेप,
दूसरा कदम.
एज अ मैन इट सेज इन वर्स 7 ही बिकेम अ बॉन्ड सर्वेंट, अ स्लेव.
और वहां लिखा है कि वहां पे वे एक दास बन गए हैं मनुष्यों के.
टू बिकम अ मैन इटसेल्फ इज ह्यूमिलिटी.
मनुष्य बनना ही दीनता है.
बट देन ही वेंट डाउन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैन व्हिच इज टू बी अ स्लेव.
और वहां से जब एक दास बन गया है सबसे निचला भाग.
सी स्लेव इज डिफरेंट फ्रॉम अ सर्वेंट.
ये जो दास रहता है वो सर्वेंट से अलग है.
सर्वेंट इज समबडी हू गेट्स अ सैलरी.
सर्वेंट ऐसा व्यक्ति है जो जिसको तनख्वाह मिलता है.
स्लेव इज यू बाय फ्रॉम द मार्केट लाइक यू बाय अ चेयर और समथिंग.
और दास उस प्रकार है जैसे मार्केट में जाके एक कुर्सी लेके आते हैं, उसके समान है.
योर प्रॉपर्टी,
वो आपका हो गया है.
यू कैन किल हिम और do anything, you don't have to pay him, a slave is your property.
आप उसको मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपका चीज है.
Nowadays we don't have slaves like that. Those days they did.
ऐसे अभी दास नहीं है, उन दिनों में दास रहते थे.
It was the lowest level of humanity.
वो मनुष्यत्व का सबसे निचला भाग है.
Jesus became like a slave.
और प्रभु उस प्रकार से सबसे निचला बन गया.
That's why he washed the disciples' feet, because that was the job of slaves in rich houses.
इसीलिए उन्होंने जाके लोगों के पांव धोए. यही बड़े घरों में दास लोग करने वाले कार्य थे.
And that was not all. That is also humility. God became man, man became slave.
वह भी दीनता है. परमेश्वर दास बन गया.
Then from there, you say, what is lower than a slave?
और दास से भी नीचे कौन है?
In the human race, nobody.
उससे नीचे कोई नहीं है.
But
परंतु
the Roman justice system did not crucify slaves.
रोमियो के जो नियम के अनुसार ऐसे दासों को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते.
But they crucified criminals.
वो हमेशा जो गुंडे लोग हैं उनको
Some
करते थे.
criminals they put in jail.
कुछ लोगों को वो जेल में डालते
But
थे.
really bad criminals, they kill them publicly on a cross.
और जो सबसे बुरे अपराधी रहते थे उनको वे क्रूस पर चढ़ाते थे.
Even the slaves would mock them.
वहां पर दास लोग भी उनका निंदा करते थे.
The criminals were even lower.
जो क्रिमिनल्स थे वो सबसे निचले थे.
And it says here,
और यहाँ लिखा है
थर्ड स्टेप ऑफ ह्यूमिलिटी,
तीसरा जो पंक्ति है,
he went became obedient to the death of a cross.
और वह अपने
verse 8
आठवें वचन में अपने आप को दीन करके मृत्यु के लिए भी आज्ञाकारी बने.
on a cross.
क्रूस पर.
See, nowadays people are not crucified.
आजकल कोई भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता.
Even hanging is done privately when nobody sees them.
और आज भी जब किसी को लटकाते हैं तो एकदम छिपा करके किसी के सामने नहीं करते.
But this was publicly.
परंतु ये सब के सामने किया.
It
है.
was only one time in history
एक
where
ही
this type of public killing of criminals was practiced.
ये एक ही समय था पूरे शास्त्र में जहां पर इस प्रकार से सबके सामने किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था.
In the first century, the Romans would do it to criminals.
वह पहली शताब्दी में रोमियो लोगों ने किया था.
And Jesus waited in heaven until the worst form of public execution was started, then came to die on the cross.
प्रभु यीशु इस प्रकार से रुके हुए थे उस समय के लिए कि ऐसा एक प्रथा चालू हो जहां पर इस प्रकार से सबके सामने क्रूस पर चढ़ाया जाता है. रुके थे
to take the lowest form of death.
वो सबसे निचला मृत्यु वो पाए.
I mean, if Jesus had to die for my sins, why did he have to be whipped and beaten and crucified? There are many other ways to die.
अगर प्रभु को मेरे लिए मरना था तो ऐसे सारे दुख मार पिटाई सब क्यों खाना था?
It was to show his humility so that he was underneath every human being that ever lived.
ताकि वह दीनता दिखा पाए, ताकि वो सारे लोगों के बीच में सबसे निचला भाग चुने.
Why was he born in a cow shed?
क्यों वो एक गौशाला में उन्होंने जन्म लिया?
With all the dirt and animals over there.
वहां सारे जानवर और गंदगी फैले हुए उनके बीच में क्यों जन्म लिया?
I'll tell you, I have never in my life heard of even a poor beggar having a baby born in a cow shed.
मैंने मेरे जीवन में एक गरीब से गरीब भिखारी का भी बच्चा ऐसे जगह पर पैदा हुआ मैंने नहीं सुना.
Have you heard of anybody being born in a cow shed, even a poor person?
क्या आपने सुना है कोई गरीब भी इस प्रकार से कोई गौशाला में पैदा हुआ बच्चा?
Why did he choose that place?
ऐसा जगह उन्होंने क्यों चुना?
God had planned the birth of Jesus for 4,000 years.
प्रभु ने 4,000 साल पहले उनका जन्म का रीति चुना था.
Couldn't he have planned a small hotel room in Bethlehem for him?
बेथलहम में एक छोटा सा एक होटल का रूम उनको नहीं दे सकते थे?
If I have 4,000 years to book a hotel room, I can easily book it.
अगर 4,000 साल मेरे पास रहता एक होटल का रूम बुक करना तो मैं आराम से कर देता.
Why didn't he do it?
ऐसा क्यों नहीं किया?
Why did he make sure that the last room was booked? Before Jesus reached there.
उन्होंने ऐसा क्यों किया कि आखिरी जो रूम बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया?
Because he wanted to show that Jesus got underneath every human being.
ताकि वो दिखाना चाहते थे कि प्रभु यीशु सबसे निचला भाग ले रहा है.
I sometimes feel that God made that donkey slow down a bit because one hotel room was still available.
मैं ऐसे विश्वास करता हूँ कि जिस गधे के ऊपर मरिये जा रही थी उसको उन्होंने धीमे किया ताकि वो आखिरी कमरा भी निकल जाए.
Hang on a little bit.
थोड़ा रुको रुको.
That one hotel room was also got to go.
वो एक जो आखिरी कमरा बचा हुआ है वो भी और कोई ले ले.
And the, finally Joseph reaches, there's nothing available.
और आखिरी में यूसुफ वहाँ पहुँचता है और वो कमरा भी गया.
I praise the Lord for such a wonderful Savior.
मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ऐसे महिमा में प्रभु के लिए.
We say we want to follow this Jesus.
हम बोलते हैं कि हम उसके पीछे जाना चाहते हैं.
I don't think most people have even seen what it means to follow this Jesus.
मैं ऐसे विश्वास करता हूँ कई लोगों ने ये भी नहीं समझा कि क्या है इसके पीछे चलना.
So many Christians today want to be stylish and fashionable and honored and accepted. I say, which Jesus is that?
मैं आज की दुनिया में हम देखते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि वो बड़े बने, फैशनेबल बने, सब जाने, ऐसा सोचते हैं किस प्रभु के पीछे आप चल रहे हो?
I'm not saying that you should dress improperly or not comb your hair. I'm not saying such stupid things.
मैं ऐसे बुद्धिहीन चीज नहीं बोल रहा कि आप आपका कंघी न करो, अच्छा कपड़ा मत पहनो, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ.
I believe Jesus always combed his hair.
मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु हमेशा अपना कंघी करते थे.
I have very little hair, but I carry a comb in my pocket.
मेरे सर में बहुत कम बाल है, तब भी मैं कंघी हाथ में लेता हूँ.
I don't want to look with hair flying around.
Sorry.
I don't want my hair to be flying around.
मैं नहीं चाहता कि मेरे बाल ऐसे उड़े रहे.
We must be neat in our appearance.
हमें हमेशा स्वच्छ रहना हमारे दृष्टि में.
Ability.
जितना हम कर सकते हैं.
And I believe Jesus always dressed neatly.
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु हमेशा अच्छी रीति से ड्रेस किया था.
But not he wasn't following the latest fashion.
परंतु वे कभी भी इस दुनिया के फैशन के लेटेस्ट नहीं जा रहे थे.
He was not interested in impressing other people. I am in touch with the latest fashion.
वो कभी भी इस प्रकार से दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहते कि मैं हमेशा लेटेस्ट फैशन के हिसाब से चलता हूँ.
What about you, sisters particularly?
मेरे प्रिय बहनों, आप किस प्रकार से चलते हो?
How many of you parents have the courage to correct your children in this area?
आप में से कितने माता पिता हैं जो आपके अपने बच्चियों को इस प्रकार से आप सही कर सकते हो?
It's difficult.
वो कठिन है.
But if you want your children to grow up godly from a young age,
अगर आप
teach them.
अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे छोटेपन से ही इस प्रकार से आत्मिक वृद्धि पाएं, तो आपको ये करना जरूरी है.
Don't suddenly try to teach them something when they are 16 years old, which you have neglected for 16 years.
अगर अचानक से 16वें साल में आप उनको बदलना चाहते हो, तो नहीं हो सकता जो आपने पहले कुछ भी नहीं किया.
But from childhood,
छोटेपन से ही,
you mothers have shown by your example, I'm not going to be a stylish woman.
अगर आपने आपके जीवन द्वारा दिखाया कि आप स्टाइलिश नहीं हो,
then your daughters will grow up that way.
तो आपकी बच्चियां भी उस प्रकार से बढ़ेंगी.
I tell you, I'm absolutely convinced that most people who say they are following Jesus, they don't have a clue what Jesus was like.
मैं ये विश्वास करता हूँ कि मुख्य लोग जो कहते हैं कि वो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, वो नहीं जानते हैं.
He humbled himself.
उसने अपने आप को दीन किया.
God became man. Man became a slave. He was willing to die as a criminal.
वह प्रभु थे, मनुष्य बने, मनुष्य से एक दास बने, दास से सबसे निचला मृत्यु पाया.
So that is humility, humility, humility.
उसमें दीनता, दीनता, दीनता है.
Those are the three secrets of the Christian life.
यही वह सीक्रेट है क्रिश्चियन जीवन का.
If you have a passion in your life,
अगर आपके जीवन में ऐसा आग्रह है,
Lord, I want to learn humility from Jesus Christ.
मैं प्रभु यीशु से दीनता सीखना चाहता हूँ.
He said in Matthew 11:29.
उन्होंने मत्ती 11वें अध्याय के 28वें ऐसे पढ़ा.
Learn from me, for I am humble in heart.
मुझसे दीनता सीखिए, क्योंकि मेरे हृदय में मैं दीन हूँ.
So we see something there that humility is not on the outside.
हम वहाँ देखते हैं कि जो दीनता है वो बाहरी रूप से नहीं है.
It's not hanging my head down and saying I'm a humble person.
वो मेरा सर ऐसे लटका के मैं दीन हूँ बोलना नहीं है.
That is all seeking from honor from men.
ये सब दूसरों से honor लेने का है.
Let me tell you one thing.
मैं एक चीज बताना चाहता हूँ.
Humility is primarily before God.
दीनता जो है वो प्रभु के सामने है.
I don't care if the whole world thinks I'm proud.
अगर ये सारी दुनिया बोले कि मैं अहंकारी हूं,
if God thinks I'm humble, it's enough.
अगर प्रभु सोचता है मैं दीन हूं तो वो बस काफी है.
You know, when Paul boasted, I don't take money from people.
जब पौलुस बोलता है कि अहंकार करता है कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं.
I'm not like these other preachers.
मैं बाकी प्रचारकों के समान नहीं हूं.
Other people may say, oh, Paul is boasting.
तो बाकी लोग बोलेंगे देखो वो कैसे अहंकार करता है.
He is not a humble person.
वो दीन व्यक्ति नहीं है.
But the people who criticize him are defeated by sin.
परंतु जो ऐसा जो निंदा करते हैं वे खुद पाप में गिरे हुए हैं.
Which proves that they are not getting grace.
इसका मतलब है उनको खुद वो कृपा नहीं मिला है.
Which proves that they are not humble.
इसका मतलब है कि वे दीन नहीं हैं.
And the man they criticize, Paul, he's getting victory over sin.
और जो व्यक्ति जिसके बारे में निंदा की जा रही है उसको कृपा मिलती
Which
है.
Which proves he's under grace.
इसका मतलब है कि वो कृपा के अधीन
Which
है.
Which proves that God thinks he's humble.
इसका मतलब है प्रभु देखता है कि वो दीन है.
So a lot of people who criticize others saying, oh, that guy's a proud man.
और कई लोग जो दूसरों के विषय में बोलते हैं कि ये बहुत अहंकारी है.
Well, I suppose you must be a humble man to criticize that man.
अगर आप दीन हो तभी ऐसे कर सकते हो.
But then the proof must be, you must be getting victory over sin.
इसका मतलब है कि आपके जीवन में पाप के ऊपर जय पाना चाहिए.
God will always give grace to the humble.
प्रभु हमेशा दीनों को ही कृपा देता है.
And sin will never rule over a man who has got grace.
और पाप कभी भी प्रभुता नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कृपा आती है.
If you see somebody getting grace,
अगर आप देखते हो किसी के पास कृपा मिल रही
है, you're not getting grace.
और आपको कृपा नहीं मिल रही है.
Remember one thing.
एक ही चीज याद रखिए.
You are the proud person and he is the humble person.
आप ही घमंडी हो वो दीन व्यक्ति है.
And what you, when Paul is boasting like that, it is a spiritual boasting.
और वह जो अहंकार कर रहा है वह एक आत्मिक अहंकार है पॉल का.
To expose the unchristlike attitudes of other preachers.
ताकि वो अख्रिस्त जो जीवन का शैली वो कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए.
And there's a great need today to do that also.
उसकी जरूरत आज भी है आज के क्रिस्ती गोला में.
You know, 500 years ago,
500 साल पहले मालूम है
टीचिंग ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ वाज नॉट नोन इन द वर्ल्ड.
जस्टिफिकेशन बाय फेथ विश्वास के द्वारा नीतिमत्व पाना वह बताया नहीं गया था उन दिनों में.
बिकॉज़ इट वाज अ रोमन कैथोलिक चर्च टीचिंग एवरीवेयर एंड दे वर सेइंग वी गेट फॉरगिवनेस बाय गिविंग मनी टू गॉड.
क्योंकि उन दिनों में जो रोमन कैथोलिक चर्च था वह ये पढ़ाते थे कि अगर आप पैसे दोगे तो आपको नीतिमत्व मिलेगा.
You give money to the church, your sins will be forgiven.
अगर आप पैसे दोगे कलीसिया को तो आपके पाप क्षमा किए जाएंगे.
You give money to God, your parents who are suffering in a place called purgatory will be delivered. They'll go to heaven.
और आपके माता पिता जो परगटरी करके जगह में फंसे हुए हैं उनको वहां से स्वर्ग में लेके जाने के लिए आप पैसा दे दो.
And the Bible, there was no Bible those days.
और उन दिनों में ऐसा पवित्र शास्त्र नहीं था.
There were few copies handwritten, very few people knew.
और कुछ ऐसे एक दो ही पन्ने में लिखे हुए चीजें थे.
All these simple people who were Roman Catholics, they believed, oh, if I give money, my sins will be forgiven.
और ये साधारण से जो लोग थे जिनको पढ़े लिखे नहीं थे वो सोचते थे अच्छा पैसा दे तो हम बच सकते हैं.
My poor parents who died in sin, I can pay money, they'll be delivered and go to heaven.
मेरे जो गरीब माता पिता हैं जो फंसे हुए हैं उनको मैं पैसे देके बचा सकता हूँ स्वर्ग में लेके जा सकता हूँ.
They made so much money like that.
और ऐसे उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया.
And there was a Roman Catholic monk called Martin Luther.
वहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे मार्टिन लूथर करके रोमन कैथोलिक में.
Catholic priest.
वह एक प्रीस्ट थे कैथोलिक में.
But he read in the Bible how we are saved by faith, not by giving money to the church.
उन्होंने बाइबल शास्त्र में पढ़ा कि विश्वास के द्वारा हम नीतिमत्व पाते हैं.
And people came to him.
और लोग उनके पास आए.
Hey Luther, we can sin now because we paid money. We can do what we like.
और वे आते थे और बोलते थे अब हम पाप कर सकते क्योंकि हमने कलीसिया को पैसा दे दिया.
We will never go to hell. We paid money to the church.
हमने पैसा दे दिया है कलीसिया को इसलिए हमको पाप कर सकते हैं.
We keep giving money and we are okay.
हम पैसा देते रहेंगे हम हमेशा अच्छे हैं.
Martin Luther got so angry.
और मार्टिन लूथर पूरे गुस्से से भर गए.
At all these priests who are deceiving these poor people.
ये सारे पादरी लोग जो ऐसे वंचित कर रहे हैं लोगों को.
And he began to proclaim what the Bible says.
और वह प्रचार करने लगे जो बाइबल बता रहा था.
And he translated the Bible into German.
और उन्होंने जर्मन भाषा में इसका भाषांतर किया.
And he published everywhere.
और सब जगह उसको
बांटा.
Salvation
is by faith.
नीति उद्धार केवल विश्वास से होता है.
The Roman Catholic Church from the Pope downwards wanted to kill him.
और जो पोप थे उस समय के वो चाहते थे कि उनका उनको मार डाले.
All the emperors who were Catholics, they wanted to kill Martin Luther.
और सारे जो राजाएं थे उस समय के वे भी चाहते थे कि मार्टिन लूथर को मार डाले.
They didn't like the truth.
क्योंकि वो सच्चाई उनको पसंद नहीं थी.
But God protected him.
परंतु प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा.
And he was the first person who spread this news around the world that salvation is not by giving money, it is by faith.
और यही पहले व्यक्ति थे जिसके जिन्होंने ये बोला कि पैसे देकर नहीं परंतु विश्वास के
So,
द्वारा हमारा उद्धार मिलता है।
today, of course, we all know that if you somebody comes and tells you that your sins can be forgiven only by giving money to the church, you know it's a lie.
आज हमको सबको मालूम है अगर कोई आपके पास आके बोलता है कि पैसे दोगे तो आपका पाप क्षमा हो तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये झूठ है।
I don't know what the Roman Catholic Church teaches, but the Protestants are not teaching that.
आज भी रोमन कैथोलिक क्या पढ़ा रहे हैं वो नहीं मालूम परंतु प्रोटेस्टेंट चर्चेस ऐसा नहीं सिखा रहे हैं।
But today, the Protestants and Pentecostals are teaching another teaching.
परंतु आज प्रोटेस्टेंट्स और पेंटिकॉस्टल लोग एक अलग चीज सिखा रहे हैं।
You can be healed of your sickness if you give money to my ministry.
अगर आप पैसा दोगे तो आपको चंगाई मिल जाएगा।
Your debts can be cleared if you give money to my ministry.
आपके जो उधारी है वो निकल जाएगा अगर चर्च को आप पैसा दोगे तो।
It's just a small twist from what happened 500 years ago.
एक छोटा सा बदलाहट कर दिया है पहले जो बोला था उससे।
You know that nobody will believe that your sins will be forgiven this way.
अगर आज सब जानते हैं कि पैसा देके क्षमा नहीं मिलता।
Because Martin Luther cleared the air on that.
क्योंकि उसके बारे में मार्टिन लूथर ने सब निकाल दिया हवा।
But now this is other new teaching. You see it in every television evangelist.
और हर एक टेलीविजन के इवेंजलिस्ट के बारे में हम यही देखते हैं।
You give money.
आप पैसा दोगे।
Is your child sick?
आपका बच्चा बीमार है।
Send 1000 rupees or 10,000 rupees.
आप 1,000 रुपए 10,000 रुपए हमको भेज दीजिए।
Help me to buy this plane so that I can preach the gospel.
ये जगह लेने के लिए पैसा दे दीजिए ताकि मैं प्रचार करूं।
I saw it on Christian television. Send 49,000 rupees.
मैंने टीवी में देखा कि आप 49,000 मुझे भेज दीजिए।
This man is already living like a millionaire. This preacher.
Already एक करोड़पति करके वो जी रहा है।
And you know who are the stupid people here?
और सबसे मूर्ख लोग कौन है मालूम है?
The people who send this money.
जो ये पैसा भेजते हैं इनको।
They don't read the Bible.
वो पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं।
Martin Luther's time they didn't have a Bible. You can't blame them.
Martin Luther के समय उनके पास बाइबल था ही नहीं तो उनका
Today,
हम बुरा नहीं बोल सकते।
Where do you read in the Bible that if you give money, God will heal your sickness?
ऐसा कहाँ लिखा गया है कि अगर आप पैसा दोगे तो आपका चंगाई होगा?
Or God will clear your debt if you give money to God.
आपका उधारी निकल जाएगा अगर आप पैसा दोगे तो।
God is not a beggar.
प्रभु ऐसा भिखारी नहीं है।
And my question is this.
मेरा प्रश्न ये है।
Why are believers not angry like Martin Luther was when they see this going on?
क्यों विश्वासी लोग ऐसा एक विरोध नहीं करते हैं जब ऐसी चीजें देखते हैं?
You have seen this on television, many of you.
आपने देखा है टेलीविजन पे?
All these people asking for money to heal their sickness or to clear their debts.
इस प्रकार से कई चीजें मांगते हैं।
I want to ask you, were you even angry even once when you saw it?
क्या आप एक बार भी इस प्रकार से गुस्से हुए ये सब चीजें टीवी पर देखकर?
You sit back and you say, yeah, you do it.
आप पीछे हटते हो बोलते हो वो सब ऐसे करते हैं।
If Martin Luther had been like that 500 years ago, there'd be no Protestant Reformation. All of you would have been Roman Catholics.
अगर 500 साल मार्टिन लूथर ने इस प्रकार विरोध ना किया होता तो आज हम सभी लोग रोमन कैथोलिक चर्च में ही बैठे रहते।
It's because one man was so angry he was willing to risk his life to speak the truth.
एक व्यक्ति जिसने इस प्रकार से विरोध किया कि उसको मरने तक के लिए उसको हो गया था तब इसके कारण हम
He
बचे।
was not afraid to say these are all deceivers who say that God wants your money.
उन्होंने इस प्रकार से धैर्य रखा कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं।
That God wants your money.
कि प्रभु आपका पैसा चाहता
God doesn't
है।
want your money. He's not a beggar.
वो ऐसा भिखारी नहीं है उसको पैसा नहीं चाहिए।
He owns all the silver and the gold. Why does he want your money?
वो सारे चांदी सोना और चांदी उसका ही है उसको पैसा नहीं चाहिए।
God wants your body, not your money.
प्रभु को आपका शरीर चाहिए उसको पैसा नहीं चाहिए।
He wants your tongue, your eyes, so that you don't sin with them.
आपका जबान आपका आंख चाहता है ताकि आप पाप ना करें।
That's what we have preached in this church.
यही हमने इस कलीसिया में सिखाया है।
And we believe if we need something, our heavenly Father will provide us.
और हम ये विश्वास करते हैं कि हम कुछ चाहते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देगा।
I proved it in my own life for the last 51 years as a full-time Christian worker.
मैं एक full-time Christian worker के रीति में 51 साल से यह मेरे जीवन में सिद्ध किया है।
I've never sent a report to anybody in my life.
मैंने कभी भी एक रिपोर्ट किसी को नहीं दिया।
Never asked anybody for money.
किसी से मैंने पैसा नहीं मांगा।
And when I got married, again we proved it in our family life.
जब मेरी शादी हुई तब मैंने ये वापस सिद्ध किया हमारे पारिवारिक जीवन में।
We were very poor.
हम बहुत गरीब थे।
We lived in a small 10 feet by 10 feet room.
हम एक 10 by 10 feet के रूम में जीते
Because
थे।
Because we refused to get into debt.
हम कभी भी उधारी नहीं लेंगे करके हमने निर्णय लिया।
We said we will never get into debt.
हम कभी उधारी में नहीं लेंगे।
78 years I've never been in debt even for 1 rupee.
78 साल से कभी भी एक पैसा भी उधारी में नहीं हुए।
The Bible says, "Oh, no man anything."
क्योंकि बाइबल पढ़ाता है कि एक भी व्यक्ति का हमें उधारी नहीं लेना है।
Romans 13 verse 8.
रोमियो 13 का 8वां वचन,
we wanted to obey it.
हम उसको अनुसरण करना चाहते थे.
When we had a baby, we struggled.
हमारे पास एक बच्चा था, हम बहुत कठिनाई में थे.
We will honor God. God will take us through trials, but He'll never let us down.
हम कठिनाइयों से जाते थे, परंतु प्रभु उसमें से मार्ग निकालता है.
We never became homeless, staying on the street.
हम कभी भी अनाथ नहीं हुए कि हमें बाहर रहना पड़ा.
What I want to say is this.
मैं ये बताना चाहता हूँ.
Then we proved it in the church.
जब ये हमने हमारे कलीसिया में सिद्ध किया.
What we proved in my life, in my family, I said, now we'll prove it in the church.
हमने हमारे घर में, हमारे पारिवारिक जीवन में और कलीसिया में भी ये सिद्ध
that
किया.
We never ask anybody for money, never send any reports.
कभी भी हम पैसा नहीं मांगे, कभी एक रिपोर्ट नहीं भेजेंगे.
And never take an offering.
कभी भी एक ऑफरिंग नहीं लेंगे.
And we'll trust God to provide our need.
और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को देगा.
We have had 200 conferences, many conferences, more than 1500 people.
हमारे पास 200 से अधिक कॉन्फ्रेंस हुए जिसमें 1500 से भी ज्यादा लोग थे.
Always, accommodation and food is free.
हमेशा रहना और खाना फ्री में देते हैं हम.
God has provided. We never take a collection even in a conference.
प्रभु ने हमको दिया है, हमने कभी भी एक कॉन्फ्रेंस में कलेक्शन नहीं
there's
लिया.
There's a box there. Anybody wants to put, can put.
वहाँ एक बॉक्स रखा है, कोई देना चाहता है तो दीजिए.
And we have proved God. Then we said, now we got to prove it in the poorest villages. Bangalore is a rich city.
ये बंगलोर के कलीसिया में चलता है, हमें देखना है कि अभी गरीब गांवों में भी होगा
so
क्या.
We have gone to the poorest villages.
इसलिए हमने सबसे गरीब गांवों में गए.
In two villages where there was no church for 2000 years.
ऐसे दो गांव जहां पर कभी भी 2000 साल में कभी क्रिस्ट के बारे में नहीं बताया.
No Christian, no church.
कोई क्रिस्ती नहीं, कोई कलीसिया नहीं.
Even in such places we have proved the same principle.
वहां पर भी हमने ये सिद्ध किया कि ऐसे सिद्धांत.
Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
प्रभु यीशु पहले, आज और हमेशा के लिए वैसा ही है.
He gives grace to the humble.
वह कृपा देते हैं दीनों पर.
Whether you are poor or rich,
वो चाहे गरीब हो या अमीर हो,
educated or uneducated,
पढ़े हो या पढ़े ना हो.
Brothers and sisters,
मेरे भाइयों बहनों,
you have an opportunity to prove in your life,
आपके पास वो अवसर है ये सिद्ध करने के लिए,
that God gives grace to the humble,
कि प्रभु कृपा देता है अपने दिनों पर.
If you are defeated by sin today,
अगर आप पाप के अधीन हो,
if you are not able to press on and make progress every year in your life,
आप इस प्रकार से धीरज लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो बढ़ने के लिए,
please face up to the fact you are not getting grace from God.
यह सिद्ध होता है कि आपके जीवन में कृपा नहीं मिल रहा है.
Wake up.
आप जाग जाइए.
It's like a sickness that is not, you're not getting healed from.
ये एक बीमारी के समान है जिसमें से आप छुटकारा नहीं पा पा रहे हो.
Why are you not concerned about it?
आप इसके बारे में जागरूक क्यों नहीं हो?
Sin is worse than a sickness.
पाप जो है वो बीमारी से भी भयंकर है.
If your anger is getting worse and worse,
अगर आपका गुस्सा बढ़ते जा रहा है.
If your anxiety and fear is getting worse and worse,
आपकी चिंताएं और व्याकुलताएं बढ़ती जा रही हैं.
If your murmuring and grumbling is getting worse and worse,
आपका कुड़कुड़ाना बढ़ते जा रहा है.
If you're loving money more and more than you did 10 years ago,
आपका जो पैसे का लोभ है वो 10 साल से ज्यादा हो गया है.
Money is not a sickness.
पैसा गंदा नहीं है.
Love of money is a terrible sickness.
परंतु पैसे का जो लोभ है वो बहुत बुरा एक बीमारी है.
Lord never tells us to give up our money.
प्रभु नहीं बोलता कि आपका पैसा फेंक दो.
He tells you to give up your love of money.
वो बोलते हैं कि पैसे का प्रेम फेंक दो.
That will destroy you.
वह आपका नाश करेगा.
But if you're not getting more and more free from these sins,
आप ऐसे पापों से अधिक और अधिक छुटकारा नहीं पा रहे हो.
You know what it proves?
इससे क्या सिद्ध होता है?
You are getting less and less grace in your life.
इसका मतलब है कि आपके जीवन में कृपा धीरे धीरे कम होते जा रही है.
You are actually becoming more and more proud.
इसका मतलब है आप धीरे धीरे ऊपर की ओर अहंकारी बन रहे हो.
You are proud of the church you are in now.
आप शायद अहंकारी हो आपके कलीसिया के कारण.
Now I am in a good church.
अभी आज मैं एक अच्छे कलीसिया में हूँ.
Not like other churches.
बाकी कलीसियों के समान नहीं हूँ.
Immediately grace departs from your life.
वहाँ तुरंत आपका कृपा निकल गया.
Even if you are in the best church in the world,
आप सबसे अच्छे कलीसिया में क्यों ना हो,
humble yourself.
वहाँ आप दीन रहिए.
God, I don't deserve to be here.
प्रभु यहाँ रहने के लिए मेरी कोई काबिलियत नहीं है.
I am nothing. I am not better than anybody else.
मैं कोई नहीं हूँ. मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ.
I am a sinner saved by grace.
मैं एक पापी हूँ, तेरे कृपा के द्वारा बचा हूँ.
I say that even today.
मैं आज भी ये साक्षी देता हूँ.
God has been good to me.
प्रभु मुझसे बहुत अधिक प्यार करता है.
I cannot take credit for anything.
मैं कोई भी चीज के लिए मैं अहंकार नहीं ले सकता.
If you remain like that,
अगर आप वहां रहोगे इस स्थिति में,
from my experience,
मैं बता सकता हूं मेरे अनुभव से,
your victory will become more and more and more and more.
आपका जो जय है प्रतिदिन आगे बढ़कर
you
बढ़ता
will
जाएगा.
Press more and more towards the mark of becoming like Jesus Christ.
आप इस प्रकार से वो शक्ति से प्रभु के समानता में बढ़ते जाओगे.
That is God's will for every one of
यही you. प्रभु का हित है आप सबों के लिए.
But we need to be challenged by that. all the time.
इसके लिए हमें इस प्रकार से चैलेंज होना जरूरी है.
And if you go to a church, they're only interested in your money.
अगर आप ऐसे कलीसिया में जाते हो जहां वे केवल आपका पैसा चाहते हैं.
And they never challenge you about your sin.
और आपके पाप के विषय में वो जागरूक नहीं करते हैं.
If I were you, I'd get out of that church tomorrow.
अगर मैं आपके जगह पे होता मैं वहां से तुरंत निकल जाता.
And go to some place where I'm challenged to live a life of victory.
और ऐसा कोई कलीसिया में जाता जहां मुझे जागरूक करते हैं ऐसा जीवन जीने के लिए.
Don't say my father went to this church and my grandfather went to this church.
आप ऐसा ना बोलो मेरे पिता और मेरे परदादा भी इसी कलीसिया में जाते थे.
Let me ask you, how many of you send your children to the same school your grandfather went to?
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने हैं जो अपने बच्चों को आज भी आपके परदादा के स्कूल में भेजना चाहते हैं?
How many of you will take your sick family member to the same hospital your grandmother was sent to?
आप में से कितने लोग हैं जो आपके परिवार के लोगों को लेके जाओगे ऐसे अस्पताल में जहाँ आपकी परदादी जाती थी?
Oh no.
वो तो नहीं करोगे आप.
स्कूल वी मस्ट गेट द बेस्ट.
जो शिक्षा है वो अच्छे स्कूल में करना है.
हॉस्पिटल वी मस्ट गेट द बेस्ट.
सबसे अच्छा अस्पताल चाहिए.
बट चर्च दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट.
पर कलीसिया जो वो मुख्य चीज नहीं है.
एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट.
जो पढ़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है.
सो वी मस्ट गेट द बेस्ट स्कूल.
इसलिए अच्छा स्कूल में जाना है.
हेल्थ इज इंपॉर्टेंट.
शरीर का आरोग्य बहुत महत्वपूर्ण है.
बेस्ट हॉस्पिटल.
अच्छे हॉस्पिटल में जाना है.
स्पिरिचुअलिटी
आत्मिकता वो छोड़ दो.
That is just like the little pickle. If you don't have it, also it's okay.
वो तो एक अचार के समान है खाने में, नहीं भी राह चलेगा.
No wonder the lives of so many Christians is so substandard.
इस कारणवश हमारे जो क्रिश्चियन जीवन का जो स्तर है वो इतना निचला है.
You can say I don't pray to Mary.
हम बोल सकते हैं हम मरिये को नहीं प्रार्थना करते.
I was not baptized as an infant.
मैं एक बच्चे के समान मेरी बपतिस्मा नहीं हुई थी.
But look at the quality of your life.
पर तो देखिए आपके जो जीवन का स्तर है वो देखिए.
It's worse than some of those people who pray to Mary.
आप वह स्थिति जो मरिये को प्रार्थना करते हैं उससे भी बदतर है.
Go and study the life of Mother Teresa.
मदर टेरेसा का जीवन आप पढ़िए.
She used to pray to Mary and pray the rosary and all.
वो मरिये को प्रार्थना करती थी और रोजरी से प्रार्थना करती थी.
How is her life better than yours?
उनका जीवन आपके जीवन से क्यों बेहतर है?
How is it she was getting more grace than you?
आपसे ज्यादा उनको क्यों कृपा मिलती थी?
How is it she was more free from the love of money than you?
वो पैसे के लोभ से ज्यादा क्यों छुटकारा पाई थी?
Don't glory that I don't pray to Mary and I'm not baptized as a child.
इसलिए आप महिमा मत करो कि आपका बपतिस्मा बचपन में नहीं हुआ या मरिये को प्रार्थना नहीं करते.
If you have more grace, your life must be at a higher level than those people.
अगर आपके ऊपर कृपा ज्यादा है तो उनके जीवन के स्तर से आपका अधिक रहेगा.
Otherwise it is foolish to glory that my doctrine is better.
यह बहुत मूर्खता है जब हम बोलते हैं कि हमारे जो डॉक्ट्रिन है उसमें हम अपने आप का अहंकार करना.
डॉक्ट्रिन इज लाइक सीड.
जो डॉक्ट्रिन है वह एक बीज के समान है.
If the seed is good, the crop must be good.
अगर वो बीज अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा आएगा.
You say that doctrine is bad, then the seed, the fruit must be bad.
अगर वह डॉक्ट्रिन अच्छा है तो उसका जो खराब है तो उसका सीड भी खराब है.
We need to wake up.
हमको जागरूक होना है.
Let's pray.
हम प्रार्थना करेंगे.
Heavenly Father,
हमारे अच्छे पिता,
help us to be gripped by these truths.
इन सत्यों से अपने आप को जकड़ने के लिए हमें मदद कीजिए.
We know that you never speak a word to discourage us, but always to challenge us to something higher.
हम जानते हैं कि आप कभी भी कोई भी वचन हमारे हमको गिराने के लिए नहीं है, परंतु हमको प्रोत्साहन करने के लिए है.
We pray in Jesus' name.
हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं.
Amen.
Amen.